أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. آج purification of the heart, متحارت القلوب کا یہ پہلا سیشن ہے. الحمدللہ جتنے لوگ حیاء علی الفلاح یا ہٹ اینڈ فٹ مومنات سے تعلق رکھتے ہیں ان میں جو ہمارے سینئر ممبر ہیں ان سب کو پتا ہوگا کہ تقریباً ہر رمضان میں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کتاب کا ایک خلاصہ یا ایک احاطہ کر کے آپ کے سامنے پیش کر سکوں. اور تقریباً چار رمضان تو ہو گئے ہیں کہ میں کوشش کر رہی ہوں, لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ اب میں با ارادہ بیٹھ کر بنیت کر کے اور اللہ سے بہت دعا کر کے آج سے میری یہ کاوش کا آغاز ہے کہ میں اس کتاب کا ایک مختصر خلاصہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور پھر اسی تعلیم کو, اسی نالج کو لے کے ہم لوگ آگے بڑھیں. یہ ٹیکنیکلی کوئی درس قرآن نہیں ہے, یہ درس حدیث نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں اپنے دل کی اور اپنے دل کو کیسے صاف کرنا ہے, اپنے دل کو کیسے خالص کرنا ہے. قرآن میں جس چیز کو تزکیہ کہا گیا ہے, جس چیز کو زکاۃ کہا گیا ہے, پاکیزگی اور طہارت کہا گیا ہے دل کی, وہ کیسے حاصل کی جاتی ہے, یہ پورا کورس جو ہے 25 سیشنز کا, یہ اس کے بارے میں ہے. آج صرف ایک تعارف ہے, ایک انٹروڈکشن ہے. کہیں پر میں انگریزی بولوں گی, کہیں پر میں اردو بولوں گی. آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنے لیکچر سے مطابقت رکھتے ہوئے اس سے ریلیونٹ امیجز بھی شیئر کروں گی. اور آپ سب سے میری یہ درخواست ہے کہ جب آپ یہ لیکچر سن لیں, جو ہمیشہ میں کوشش کروں گی کہ وہ مختصر ہو, کسی کا زیادہ وقت نہ لے, اور امیجز کے ذریعے میں وہ بات زیادہ اچھی طرح آپ کو سمجھا دوں جو میں یہاں الفاظ میں بولنے کی کوشش کرتی ہوں, کہ یہ آپ آپس میں ضرور ڈسکس کریں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ڈسکس کریں. اور جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہوں وہ آپ لکھ کر حیاء علی الفلاح میں ضرور بھیجیں, کیونکہ یہ ڈسکشن ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی سمجھ کو آگے بڑھاتی ہے اور انسان کی طلب اس سے ظاہر ہوتی ہے. تو خاص طور پہ پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ یا متحارت القلوب کا میں نے انتخاب کیوں کیا ہے. یہ کتاب موریتانیہ میں رہنے والے ایک عالم ہیں ہمارے امام المولود, یہ ان کی ایک نظم کا ترجمہ ہے اور نظم کا نام متحارت القلوب ہے. دل کا انہوں نے کیوں انتخاب کیا ہے, کیونکہ طہارت کے بارے میں ہم ہر وقت سنتے رہتے ہیں لیکن دلوں کی طہارت بہت کم ڈسکس کی جاتی ہے. تو شروع میں یہ بات سمجھ لیں کہ دنیا کی ہر تہذیب, جتنے مذہب ہیں, جتنی سویلائزیشنز گزری ہیں, اس میں دل کا ایک خاص مقام ہے. سب سے پہلے تو قرآن میں قلب سلیم والوں کو بشارتیں دی گئی ہیں. سورہ شعراء میں ہے کہ جس دن نہ کسی کے کا مال اس کے کام آئے گا اور نہ ہی اولاد اس کے کام آئے گی, اس دن تو وہی کامیاب ہے جو اپنے رب کے پاس ایک قلب سلیم لے کر آیا. تو یہ قلب سلیم کیا چیز ہے, یہ ہم نے سمجھنا ہے. یہ ہم نے دل کو ہم نے سالم کیسے رکھنا ہے اور دل کو ہم نے سلامتی میں کیسے رکھنا ہے, یہ پورا کورس اس کے بارے میں ہے. دوسرا حوالہ حدیث کا ہے, جو مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ انسانوں کے سینوں میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, اگر یہ سالم ہے تو پورا جسم سالم ہے, اور اگر یہ فاسد ہو جائے تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے. یاد رکھو یہ دل ہے. اسی طرح پرانے صحیفوں میں, بائبل میں ہے, بلیسڈ آر دا پیور آف ہارٹ فار دے شیل سی گاڈ. اور یہ میں نے کل ایک کوٹ بھی بھیجی تھی, آج میں دوبارہ حوالے کے طور پہ بھیجوں گی. میتھیو متی کی بائبل کا یہ حصہ ہے. اسی طرح دنیا کا میرے خیال میں ون آف دا اولڈسٹ ریلیجنز جو ہے چائنا کا, یہ بدھسٹ ریلیجن جو ہے, اس میں دل کو شین انرجی کا گھر کہا جاتا ہے, اور شین کا مطلب ہے روح. تو रूह का घर जो है उस फिलॉसफी में भी सीने में धड़कने वाले इस उजू को, इस दिल को कहा जाता है, और शैन की सेहत का बहुत ज्यादा एहतमाम किया गया है और बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं। हिंदू मत में जो दिल का चाक्रा है ये सबसे कीमती चाक्रा है और इसकी खास खुराक और इसके लिए खास एक्सरसाइजेस और इसके लिए खास योगा और इसके लिए खास किस्म की मेडिटेशन एडवाइस की जाती है कि आपने अपने दिल को कैसे ठीक रखना है। कुरान में लोगों की तीन किस्में बयान हुई हैं, मोमिन जिसका दिल खालिस है, काफिर जिसके दिल पर मोहर है, और मुनाफिक जिसके दिल में बीमारी है, फी कुलूबिहिम मरद। तो अब ये दिल की बीमारी जो है इससे कैसे बचा जा सकता है। हदीस में है कि जिस दिल में अल्लाह की याद है और जिसमें नहीं है तो इन दो दिलों की मिसाल जिंदा और मुर्दा की है, यानी दिल को जिंदा रखने का फॉर्मूला जो है वो दिल में अल्लाह की याद का मौजूद होना है। अब जरा आप हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में देखें तो उर्दू, अरबी और इब्रानी, ये जबाने जो हैं, और अरबी और इब्रानी इसमें एंशंट जबाने हैं, दाएं से बाएं जानिब लिखी जाती हैं, यानी ये दिल की सिमत में लिखी जाती हैं। काबा का तवाफ काउंटर क्लॉकवाइज होता है और हमारा जिस्म का जो बायां हिस्सा है जिसमें दिल वाक़े है वो काबा की तरफ रखा जाता है। मेडिकल की इस्तिलाह में हमारा ये दिल जो है ये 2 गैलन खून हर मिनट में पंप करता है, 100 गैलन ये 1 घंटे में पंप करता है, और हमारे जिस्म में शरीयानों और वरीदों का एक बड़ा सिलसिला है जो 60,000 मील लंबा है। 60,000 मील जमीन के कुतर का भी डबल है। मां के पेट में बच्चे का दिल दिमाग बनने से पहले धड़कना शुरू कर देता है, यानी दिल का दिमाग से शुरू से ही कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान में गुमराह लोगों के लिए कहा गया है कि क्या इनके दिल समझते नहीं हैं? क्या इनके दिल ऐसे नहीं हैं कि ये समझ लें? तो और कुफर का लुगवी मतलब है किसी चीज को ढांपना। ये आज के लेक्चर में तारुफी लेक्चर है, ये अच्छी तरह समझ लें कि इंसान का दिल जो है जिसमें उसकी रूह है, जो उसका सबसे कीमती चाक्रा है, जो उसके पूरे जिस्म में चलने वाले खून को पंप करता है, वो उजू जो है उसमें एक चीज पाई जाती है जिसे हम आम इस्तिलाह में जमीर कहते हैं। ये वो रूह है जो अल्लाह ने हमारे अंदर फूंकी है और जिसने अल्लाह से वादा किया है कि आप ही हमारे रब हैं, अहले अलस जिसको हम कहते हैं। तो ये दिल जो है ये हर गुनाह और हर नाफरमानी के बाद उदास और गमगीन हो जाता है और ये इंसान को एहसास दिलाने की कोशिश करता है। इसी को हम जमीर की आवाज या गिल्ट कहते हैं, और जितना हम इस आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं अपने अमल से और अपनी बेतवजही से, दिल उतना ही बीमार होता चला जाता है। जितना हम इस दुनिया और इसके आर्जी ऐशो इशरत में डूबते चले जाते हैं उतना ही हम अपने दिल से दूर होते चले जाते हैं और ये दिल बीमार होता चला जाता है। इसी बीमारी का हमने इलाज करना है इंशाल्लाह, इसी इलाज का हमने एहतमाम करना है इस रमजान में, क्योंकि इलाज तो हर वक्त जरूरी है लेकिन ये अल्लाह ने हमें एक मौका दिया है जब हम बहुत ज्यादा अपने अल्लाह के और अपने रब के और अपनी तौबा के मूड में होते हैं, हम लोग अल्लाह के करीब होते हैं, तो इसका फायदा उठाना चाहिए। अब दिल जब बीमार होता चला जाता है तो इसमें 2 किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं जो कुरान ने हमें अच्छी तरह समझाई हुई हैं। पहली किस्म की बीमारी शुभात है। शुभा ये नॉलेज की कमी की वजह से होता है, ये समझ की कमी की वजह से होता है। हम अपने दिल में बदगुमानियां और शकूक को शुभात को जगह देते हैं जिसकी वजह से हमारा दिल उदास होता है और अल्लाह से दूर होता है और गमगीन होता है। और दूसरी किस्म की बीमारी जो है ये नॉलेज की कमी नहीं है, ये कोई इल्म की कमी नहीं है, ये ख्वाहिश की ज्यादती है जिसको शहवात कहते हैं, यानी कि कुरान में है कि और जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना इलाह बना लिया, जिसने अपनी शहवत को अपने सामने रख के अपने खालिक की नाफरमानी की, तो इसी तरह जिस तरह शुभात से बचना जरूरी है उसी कदर शहवात से बचना भी बहुत जरूरी है। आखिर में ये एक बात अच्छी तरह समझ लें, जिसके ऊपर तकरीबन पूरा कोर्स बेस्ड होगा, कि जिस तरह अब मैंने आपको दिल की पूरी फिजियोलॉजी समझाई और जिस तरह हमें जिंदा रहने के लिए सांस लेनी होती है, उस सांस के जरिए हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, इसी तरह दिल को भी एक खास ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और ये ऑक्सीजन जो है ये अल्लाह की याद है, दिल की सेहत का और दिल की खुशी का और दिल की आसूदगी का राज जो है वो अपने खालिक की याद है। तो जिसने अपने दिल को सेहतमंद रखना है, जिसने अपने दिल को जिंदा रखना है, जिसने अपने दिल को पाक साफ और ताहिर तोहर में रखना है, उनके लिए अल्लाह की याद का एहतमाम करना बहुत जरूरी है। और ये याद तभी हमारे दिल में खालिस होके उतर सकती है जब हम अपने दिल में बसने वाले शुभात और शहवात का अजाला कर लें, जब हम अपने शुभात और शहवात को कंट्रोल में कर लें और उनको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खत्म कर लें, तभी हमारे दिल में वो सच्ची याद उतर सकती है जो हमारे दिलों के लिए ऑक्सीजन है और जिसके जरिए दिल वो स्टेटस अचीव करता है जिसको हम कल्बे सलीम कहते हैं। इंशाल्लाह कल पहला चैप्टर मैं आपके लिए दोबारा से भेजूंगी। आपका जो भी सवाल हो बराए मेहरबानी आज शाम तक वो भेज दें। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी जितने सवालों के मैं जवाब दे सकती हूं वो दे दूं, और जो नहीं दे सकती उनके हवाले या उनके बारे में कोई लिंक या उनके बारे में कोई पेज मैं आपके लिए भेज दूं। आइए सब मिल के दुआ करें कि इस रमजान में और अल्लाह ने हमें जो ये खूबसूरत महीना दिया है और हम सबको एक दूसरे का साथ दिया है, इसका फायदा उठा के हम अपने दिलों को खालिस कर लें, हम अपने दिलों को वो बना लें जिन्होंने आखिरत में जाके अल्लाह के सामने दावा करना है कि या अल्लाह हम सालिम और सलामती में तेरे सामने आ गए हैं, अब तेरा मामला जो भी है वो हमें कबूल है। واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين।